जो आम मनुष्य का निश्चय होता है, या यूं कह लें कि जो बुद्धि का निश्चय होता है, एक ही निश्चय है कि संसार में जो कुछ भी इच्छाएं मेरे मन के अंदर उठ रही हैं वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर मनुष्य को अपनी इच्छाओं के कारण ही बेचैनी अनुभव होती है, और उस बेचैनी से मुक्ति इच्छा पूर्ति के द्वारा ही होती है। ऐसा एक आम निश्चय होता है बुद्धि के अंदर। और जैसा कि संसार में वो चलन देखता है आम व्यक्तियों का, उसी के अनुसार वो अपने जीवन का भी प्रोग्राम बना लेता है, जिस प्रोग्राम पर चलकर वो आशा करता है कि उसकी जो मुख्य इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी। और जीवन में सुख और आनंद प्राप्त होगा। लेकिन उसको इस प्रकृति का रहस्य नहीं पता होता। संपूर्ण प्रकृति किसके हुक्म में चल रही है, किसके अधीन चल रही है, इसका उसको कोई ज्ञान नहीं होता। जो कुछ भी ज्ञान होता है वो ज्ञान वो जो हिस्ट्री से सीखता है, ज्योग्राफी से सीखता है, या जो वैज्ञानिक विश्लेषण से सीखता है, जिसको साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, तो इसी को ज्ञान समझता है। और इनमें से कोई भी खुद भी इस प्रकृति के रहस्य को नहीं जानता। इस संपूर्ण प्रकृति के रहस्य को जानने वाला यदि कोई व्यक्ति संसार में आता है या दिखाई पड़ता है, उसको हम ऋषि कहते हैं, उसको हम सद्गुरु कहते हैं, उसको हम अवतार कहते हैं, या उसको हम सत्पुरुष कहते हैं। और ये जो आप समता विलास का वचन पढ़ रहे हैं जीवन यात्रा का, ये वो अपने अनुभव से ये बात लिख रहा है। उसका अनुभव कह रहा है कि इस देह के अंदर ही ये जीव प्रभु की याद करके प्रभु का अनुभव इस देह के अंदर कर लेता है। लेकिन यह तभी संभव है जब 100% बुद्धि का यह पक्का निश्चय बन जाए कि इस संसार में कुछ भी प्रयत्न करने के पश्चात भी बेचैनी से मुक्ति मुझको नहीं मिलने वाली। जिस प्रकार की एक साधारण उदाहरण से इस चीज को समझें, तो मनुष्य के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी संसारिक ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी साजो सामान क्यों ना हो, कितने भी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से जान पहचान उसकी क्यों ना हो, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्ति कोई साधन उसको मौत से बचा नहीं सकता। यहां आके मनुष्य की सारी सामर्थ, संसार के लोगों की सारी सामर्थ फेल हो जाती। इस चीज को तो मनुष्य आसानी से स्वीकार कर लेता है लेकिन इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि तेरा हर प्रयत्न तेरी मानसिक बेचैनी दूर करने में असमर्थ है, फेल है। यदि तुझे चैन ही चाहिए तो चैन का रास्ता इस देह के अंदर मौजूद है और उस शक्ति के पास है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वही तेरी देह का मालिक है, वही तारी सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए वाणी कह रही है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। तो जीव संसार में अकर्ता होने के लिए आया है, लेकिन जब से ये होश संभालता है, जब तक इसकी अंतिम श्वास नहीं निकलती, ये अधिक से अधिक करने की ही कोशिश करता है। कर्तापन में ही फंसा रहता है, कर्म और कर्मफल में ही फंसा रहता है। तो जो अध्यात्म विद्या है वो तो इसका एक सीधा सा विश्लेषण पेश कर रही है साधारण रूप में, कि जो कुछ भी तू कर्म करता है इच्छा करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो उस कर्म का जो फल होता है वो द्वंद्व रूप होता है। द्वंद का मतलब जैसे कि दिन और रात द्वंद है, सफलता विफलता द्वंद है, अच्छा बुरा द्वंद है, मिलना ना मिलना द्वंद है, सुख और दुख द्वंद है। जो कुछ भी तू करेगा, जो कुछ भी तू सोचेगा, जो कुछ भी तू प्राप्त करेगा, सब कुछ द्वंद्व रूप है। और इस द्वंद्व का जो सही मतलब है वो ये होता है कि जैसे कि सुख दुख है, द्वंद्व है, तो सुख से ही दुख का निर्माण होता है और दुख से ही सुख का निर्माण होता है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। दिन से ही रात का निर्माण होता है, रात से ही दिन का निर्माण होता है, ये इंटरडिपेंडेंट है। तो यहां पर पूरी प्रकृति में हर स्थिति द्वंद्व रूप है, परिवर्तनशील है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लिया आपने एक स्टूल का निर्माण कर लिया, जिस दिन इसका निर्माण पूरा होगा उसी दिन से इसके अंदर एजिंग इफेक्ट चालू हो जाएगा, इसकी नाश की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली, स्लो है या फास्ट है उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन नाश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहां हर चीज में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और तू इसमें परमानेंसी चाहता है, इसको स्थायी बनाना चाहता है। इसलिए ना तेरे मन की हालत कभी स्थिर रहती है, ना संसार की कोई वस्तु स्थिर रहती है, ना संसार का कोई व्यक्ति स्थिर रहता है, ना संसार का कोई भोग स्थिर रहता है, ना दुख ही स्थिर रहता है, ना सुख ही स्थिर रहता है। हर चीज में यहाँ पर निरंतर चेंज, निरंतर परिवर्तन है। इसीलिए महाजी इसके लिए एक साधारण सा वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं सारी प्रकृति नाश रूप है। इस पूरे विश्व में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हुई, पूरी पूरी नाश हो गई। भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो जानते हैं वो तो वैदिक सिविलाइजेशन है, गायब हो गई दुनिया से। यूनान की सभ्यता दुनिया में फेमस थी, गायब हो गई, रही नहीं, सभ्यता की सभ्यता ही खत्म हो गई। संसार में किस चीज का निर्माण करोगे आप? पाणिनि ऋषि जिसने संस्कृत ग्रामर लिखी, पाणिनि अष्टाध्यायी, महाजी खुद कहते थे कि प्रेमी उस समय उनके आश्रम में 10,000 विद्यार्थी विश्व से उनके संस्कृत सीखने आते थे, संस्कृत ग्रामर, चाइना से आते थे, अफगानिस्तान से आते थे, जो भी आसपास के जहाँ से लोग पहुँच सकते थे। 10,000 विद्यार्थी पाणिनि ऋषि के आश्रम का, ये यूनिवर्सिटी का ही इसमें आते थे, उसका नामो निशान गायब हो गया। तो इसीलिए स्थिरता जो है वो प्रभु में है, स्थिरता उसमें कभी परिवर्तन आ सकती है। तो जब हम इस प्रकृति का विज्ञान, ईश्वर का विज्ञान और अपना विज्ञान जब सत्पुरुषों से सीखते हैं, उनके शास्त्रों से सीखते हैं, क्योंकि वहां तो विज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसकी कभी कीमत को समझा नहीं, उसकी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उससे हमारी संसारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। इसलिए ये चीजें यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती। मनुष्य जो है खुद ही पढ़ता है, किसी गुरु पर फेथ आ गया तो उस फेथ के कारण वो पढ़ता है, या पूर्वजन्म के संस्कार उसके उदय हो गए तो खुद मेहनत करके वो शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, बहुत सी चीजें सीख लेता है, किसी से मार्गदर्शन ले लेता है, लेकिन इस रहस्य को वो जानकर ही छोड़ता है। ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, इसलिए गीता में आया हजारों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है, और ऐसे हजारों में से कोई एक उस ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। तो ये रेयर चीज है, साधारण तो नहीं है, लेकिन यदि मानसिक क्लेश से बचना है, जीवन के पतन से बचना है, तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। देयर इज नो सेकेंड वे, यही एकमात्र रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य को कभी पछताना नहीं पड़ता। तो इसीलिए सत्पुरुष विज्ञान के रूप में हमको समझाते हैं, देखो इस प्रकृति का निर्माण और इस देह का निर्माण एक ही मटेरियल से हुआ है। वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व से इन दोनों का निर्माण हुआ है। और पांच तत्व के पांच विकार होते हैं या पांच इफेक्ट होते हैं, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। इसलिए मनुष्य सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कर्म करेगा, वो जो कुछ भी मेथड अपनाएगा, वो उसके हर कर्म के अंदर ये पांच विकार प्रकट होंगे, या काम की प्रधानता होगी, या काम के लिए पूरी वो डिजायर पूरी करेगा, या क्रोध के वशीभूत हो करेगा, या लोभ के वशीभूत हो करेगा, या मोह के वशीभूत हो करेगा, या अहंकार के वशीभूत होकर करेगा। तो सांसारिक जीवन मनुष्य के अंदर इन पांच विकारों की वृद्धि करता है। सांसारिक कर्म मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर ये पांच विकारों की वृद्धि करता है। और हम सब जानते हैं कि किसी के अंदर क्रोध की वृद्धि हो जाए तो कितनी आग उसके अंदर लगती है, बेचैन करती है। लोभ की वृद्धि हो जाए तो पैसा कमाने की कैसी रेस लगाता है, उसको ये फुर्सत नहीं होती मेरे पास कितने पैसे हैं, आगे करूंगा क्या मैं ज्यादा पैसे का, कमाए रहता है, कमाए रहता है। और हम संसार में देखते हैं कि लोगों पर हजारों करोड़ रुपया हो जाता है तभी बेईमानी, उससे भी बड़े बेईमानी करते हैं जो एक साधारण व्यक्ति करेगा। जितना पैसा ज्यादा हो गया उतने बड़े बेईमान बन गए। ये क्या है, ये लोभ की वृत्ति है, विकार है, उनको पता ही नहीं ये विकार है, मैं कमाई नहीं बढ़ा रहा हूं, विकार की कमाई कर रहा हूं। तो सत्पुरुष कहते हैं, प्रेमी, संसारी मनुष्य जो है उसको पता नहीं होता, उसके चित्त में ये पांच विकार पलते रहते हैं और यही उसको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इन विकारों से इच्छाओं का जनरेशन होता है, इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये सही तरीके गलत तरीके भाई हुक और क्रुक उसको पूरी करने की कोशिश करता है, और करते 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 जीवन लीला समाप्त हो जाती है, या कहीं ऐसी गलती कर बैठा कि पुलिस ने जेल में ही बंद कर दिया। कैसी दुर्गति से लोग मरते हैं, आपस में अपने ही लोगों को काट मार देते हैं। इसलिए महाजी ने कहा कि ये इसको भोगवाद कहते हैं, इसको मेटेरियलिज्म कहते हैं। तो ये जो भोगवादी जीवन है, जिसको हम साधारण रूप में इंद्रिय सुख वाला जीवन कहते हैं, ये मनुष्य के पतन का रास्ता है। इसी को एक नाम स्वार्थ दिया जाता है, स्वार्थी जीवन। तो यदि मनुष्य इस स्वार्थी जीवन के प्रति जागरूक नहीं हुआ, इसका विज्ञान को समझ में नहीं आया, तब महाराज जी ने संत अभिलाष में लिख कर दिया है, इसमें आप पढ़कर देख लीजिए कि जो ये साइंटिफिक रिसर्च है ये भोगवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि नई रिसर्च होती है उससे नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न होती है, नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न होती है तो नए प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, और नए प्रोडक्ट्स के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो उनको उसको खरीदने के लिए कमाई करते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं जैसे जैसे साइंस का के अचीवमेंट, साइंस की रिसर्च बढ़ी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, वैसे वैसे पूरी दुनिया में भोगवाद बढ़ा है, और इसका सीधा सा इफेक्ट जो पूरी दुनिया महसूस करती है लेकिन फिर भी अलर्ट नहीं है। एक देश दूसरे से लड़ता है इसीलिए कि मेरे भोग कम ना हो जाए, तो पूरी प्रकृति के अंदर आज जो पॉल्यूशन की कंडीशन है आप देख लीजिए, हवा में जहर घुला हुआ है, पानी में जहर घुला हुआ है, लोगों के व्यवहार में जहर घुला हुआ है, मन में जहर घुला हुआ है, बाहर की प्रकृति में भी जहर है, अंदर की प्रकृति में भी जहर है। तो माँ जी कहते हैं प्रेमी जब इस तरह का वक्त आता है कि भोगवाद बढ़ता जाता है, तब लोग इसके प्रभाव के कारण ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, और इस स्वार्थ का नतीजा क्या निकलता है, मनुष्य एक दूसरे का हक हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, और जो आरोप लगाए थे वो निकला नहीं इराक के पास कुछ, लेकिन बैकग्राउंड में तो कुछ तेल था, वो बैकग्राउंड में था कि अपनी पावर से वो सुख छीनने उनसे, लेकिन बाहर दुनिया को कन्विंस करता रहा, पाठ पढ़ाता रहा, इसके पास जो है वो रासायनिक हथियार हैं, इसके पास ये है, इसके पास वो है, सारी दुनिया ने देखा। तो जिसकी सांसारिक दृष्टि से इतनी डेवलप्ड बुद्धि है वो ये कर रहा है तो सतपुरुष की बात तो ठीक है। जब भोगवाद बढ़ जाता है, डिजायर्स बढ़ जाती हैं, तो मनुष्य की बुद्धि के अंदर चालाकी आ जाती है, इसको होशियारी बोलता है, और उस चालाकी में दूसरे का हक छीनने की कोशिश करता है अपनी पावर से। तो कहते हैं कि जब ये वक्त आता है दुनिया में, तब लोग आपस में ही कट कट के मर जाते हैं, जो सैकड़ों वर्षों में उन्होंने उन्नति की है वो कुछ ही दिनों में नाश कर देते हैं, और वर्ल्ड वार का यही नतीजा निकलता है। जर्मनी का क्या हाल हुआ, इंग्लैंड का क्या हाल हुआ वर्ल्ड वार, इंग्लैंड का ये हाल था वर्ल्ड वार के अंदर कि घरों की बाहर की ग्रिल तक निकाल के गवर्नमेंट ले जाती थी ताकि वो उनकी ढलाई करके बम बना सके और ये लड़ाई का सामान बना सके, इंग्लैंड का यह हाल हो गया था। जर्मनी तो तबाही हो गया, दो भागी बन गए थे। तो अब संत अभिलाष पढ़कर देख लीजिए विश्व शांति संदेश चैप्टर में महाजी क्या लिख रहे हैं, ये दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनके लिए बात है लिखी हुई है, वो ये आंख बंद करके जो प्रगति कर रहे हैं, ये संसार की प्रगति ये कहां सर्वनाश के कगार पर ले जाएगी, वहां उन्होंने फोरकास्ट कर दिया था। तो ऋषि जानता है इस पूरे प्रकृति के रहस्य को, ऋषि जानता है, इसलिए उसके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं जिसको हम शिष्य कहते हैं, सबसे पहले उनके जीवन को वो संदेश देता है, प्रेमी सादा बनो। सादा क्यों? क्योंकि तेरी जरूरतें इतनी कम हो जाना चाहिए, तेरी बुद्धि होश में आ जाए कि शरीर की रक्षा के लिए ये सारी चीजें हैं, जो भी संसार के सुख कहते हो, संसारी पदार्थ कहते हो, शरीर की रक्षा के लिए बस, इसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। लेकिन मन की रक्षा के लिए, बुद्धि की रक्षा के लिए, मन में डिजायर्स पल रही है मेरे, बुद्धि में बेचैनी पल रही है मेरे, मैं बेचैन हूं। क्योंकि बुद्धि उसे कहते हैं जो होश में है, जो जानने वाली चीज है। मन जानने वाली चीज नहीं है, मैं जानने वाला हूं। तो मन के संकल्पों के कारण मैं परेशान हूं, मन में उठने वाली डिजायर के कारण मैं परेशान हूं, जो इच्छा मेरी पूर्ति नहीं हो पा रही उसके कारण मैं परेशान हूं। तो इसको महाराज कहते हैं प्रेमी बुद्धि बेचैन है या जीव बेचैन है, दो वर्ड यूज करते हैं। तो मैं बेचैन हूं और इस बेचैनी का इलाज मैं संसार में तलाश कर रहा हूं। इस बेचैनी का इलाज ना कि दुनिया किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी साइंटिस्ट के पास है, ना किसी प्रोफेसर के पास है, ना किसी मनुष्य के पास है। इस बेचैनी का इलाज यदि कहीं लिखा है तो शास्त्र में लिखा है, या किसी के पास है तो गुरु के पास, जो ब्रह्म ऋषि है, जो खुद ईश्वर है, जो वासना रहित है, जो इच्छा रहित है। क्योंकि महाजी ने खुद ये बात कही है कि प्रेमी जब तक एक इच्छा भी बाकी है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह इनके अनुभव की बात है। तो बचपन से उन्होंने भी ये यात्रा तय की, जब ये यात्रा उनकी पूर्ण हो गई तब वो गुरु बने, अर्थात निर्वास हो गए, तब देखा कि सारी शांति का स्रोत तो इस देह के अंदर मौजूद है। जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो शांति का सागर है, और जिसको संसार कहते हैं ये बेचैनी का सागर है, इसीलिए इसका नाम भव सागर रखा गया है शास्त्र। तो जब तक गुरु की इस बात को या इस एनालिसिस को, इस विश्लेषण को, जब तक मैं पढ़ने को ही तैयार नहीं हूं, उसकी जरूरत ही नहीं समझता, या पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है तो उसको समझने की जरूरत नहीं समझता, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं समझता जो उसको जानता हो, तो जीव सारी जिंदगी भटकेगा ही क्या करेगा। इसलिए कोई भाग्यशाली जीव पूर्ण गुरु की शरण लेता है। क्यों शरण लेता है? उसको पता होता है कि यदि शांति का रास्ता किसी के पास है तो केवल गुरु के पास। और महाजी कहते हैं प्रेमी गुरु ज्ञान ही गुरु है। महाजी कहते हैं प्रेमी गुरु किस किस को पार लगाएगा? इसलिए गुरु ज्ञान वाणी के रूप में प्रकट होता है। देखो देह करके तो वो भी मनुष्य ही है, हमारे जैसा ही है वो, और यदि उनकी भी बुद्धि की बात करें तो महाजी कहते हैं प्रेमी इनकी बुद्धि का निर्णय नहीं है, वो ये वाणी इनकी बुद्धि से प्रकट नहीं हुई है, इनकी कोशिश से प्रकट नहीं हुई है, ये अंतर्यामी ईश्वर की कृपा है, ये उसकी ग्रेस है, जो जगत के दुखी जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुई है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। इस जगत में दुखी जो भी दुखी जीव है, और जो ईश्वर के रास्ते पर चलकर उस दुख की निवृत्ति चाहता है, परमानेंट दुख की निवृत्ति चाहता है, ये वाणी उसके लिए आई है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। उसके लिए सतगुरु आया है, जगत से या जगत के दुखों से उसका उद्धार करने के लिए, परमानेंट शांति प्रदान करने के लिए, जिसको मोक्ष कहते हैं। अब बताइए जब तक मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंचता कि संसार से होकर रास्ता नहीं जाता चैन का, ईश्वर से होकर संसार का रास्ता जाता है चैन का, और वो ईश्वर इस देह के अंदर मौजूद है, और गुरु खुद करा है, वास्तव में वो ईश्वर ही तेरा गुरु है, क्योंकि जिसके अंदर वासना खत्म हो गई वो फिर मनुष्य नहीं है, उसको ईश्वर कहते हैं। इसलिए महा जी की वाणी कह रही है, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघार। सतगुरु तेरे अंदर है क्योंकि वो ईश्वर है, हर पल तुझको पुकार रहा है कि तू मेरी तरफ आ, कहां जा रहा है संसार की तरफ। तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघार, तो ये जो ज्ञान है ये आज्ञा है उसकी। जो कुछ ये संता प्रकाश ग्रंथ है, ये संता विलास है, ये उसकी आज्ञा है। घटका पाठ उघाड़ने की बात कर, आज्ञा किस लिए है? घटका पाठ उघाड़ करने के लिए। तो घटका पाठ कौन सा है? जो ये नाभि चक्र है इसको घटका पाठ बोलते हैं। तो गुरु के द्वारा जो मंत्र प्रकट किया गया है, जिसको हम महामंत्र हम करके हम जानते हैं, या जिसकी गुरु से सीधी भेंट हुई, जिसको गुरु ने दीक्षा दी, शिष्य बनाया, तो दीक्षा क्या होती है? ये गुरु कृपा, गुरु ग्रेस है, वो नाम के रूप में शिष्य को मिलती है। तो उस नाम पर जब ये मन को लगाता है तब ये घटका पाठ उसका खुलता है, वहां अंतर्यामी गुरु से उसकी भेंट होती है। तो अंदर की साधना वही गुरु करता है इसकी, या गुरु करवाता है। तो धीरे धीरे मन का जो जहर है धीरे 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 कम होता रहता है, कम होता रहता है। जैसे मन का जहर कम होता है, मन की बेचैनी कम होती है, मन की वासना कम होती है, वैसे ही वैसे आपकी जो श्वास है ना, ये धीरे 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 सूक्ष्म होती रहती है, सूक्ष्म होती रहती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है ये। एक दिन ऐसा लगता है ये रुकी ही गई, चली ही नहीं रही है। तो उस समय मन की यह हालत होती है, मन के अंदर संसार का एक संकल्प भी उठना संभव नहीं होता, एक संकल्प। और आप जरा 10 मिनट भी चाहे ओम नमः शिवाय जाप कर लो, चाहे महामंत्र जाप कर लो, या कुछ भी जाप कर लो, करके देख लो, 10 मिनट भी आप मन को नहीं रोक सकते। 10 मिनट तो छोड़ो, 1 मिनट भी आप मन को नहीं रोक सकते। आज आपकी बेचैनी की ये हालत है मन की, तो इसका ना गुरु की बात ठीक है। कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी आपको भोग विलास नहीं मिल रहा है, तब आपका मन शांत हो रहा है। यहां भोग विलास बढ़ता जा रहा है तब भी आपका मन अशांत हो रहा है, बेईमानी नहीं छोड़ रहा, बेईमानी भी बढ़ती जा रही है उसी रेशो में। तो इसका मतलब गुरु की बात ठीक है। तो गुरु के ज्ञान को यदि बारीकी से पढ़ा है आपने, समझने की कोशिश की है, तो वो तो प्रमाण है इस बात का, मन की शांति तो बढ़ा रही है वहां। इसलिए आपने देखा होगा जो भी ईमानदारी से ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला है, बनावट करने वाला नहीं, जैसे नकली गुरु जेल में चले पकड़ के बंद कर देती है पुलिस, बनावटी अध्यात्म का, ठग रहे हैं लोगों को भोग प्राप्ति के लिए, ठग रहे हैं। जो रियल गुरु है आप बैठ के देख लो उसके पास। यहाँ केला घाट में महाजी कई महीने रहे, यहाँ पर पूरी बरसात में यहां टेंट लगा के बोलो से, कहां देहरादून था, ये जंगल था, दिन में भी जंगली जानवरों की आवाजें सुनी जा सकती थी उस समय, और देहरादून से प्रेमी यहां आ जाते थे उनके पास। क्या था महाराज जी के पास? और महाराज जी को कहकर भेजना पड़ता था, प्रेमी कारोबार भी संभालना है, जाओ, रात हो गई, मन ही नहीं करता था जाने किसी। जिसके पास कोई भोग विलास नहीं है उसके पास से जाने को मन ही नहीं कर रहा है। ये तो साक्षात प्रमाण है। उनका शरीर देखो तो हड्डी का ढांचा था बिल्कुल, कि क्या चीज है उसके अंदर कि लोग उसके पास से हट हटना ही नहीं चाहते थे, चाहे रात हो जाए तब भी। और खुद उस टेंट में भी ना रहकर ये नदी पार करके महाजी पहाड़ पर सारी रात बिता देते। तो बताइए किसके आश्रय पे वो देह पल रही है। हम तो तपोभूमि में रहकर भी बड़े घबराते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये कमी है, वो कमी है। एक वो वक्त भी था तपोभूमि का, जब मुझको याद है पहली बार जब यहाँ पे आया था तो रात को बाथरूम भी जाना है तो बाउंड्री पार करके बाहर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए, हमने कोई व्यवस्था नहीं थी। कई बार नदी पार करके भी फ्रेश होने जाना पड़ता था, वो दिन भी थे तपोभूमि। तो आपकी कितनी सुविधाएं बढ़ा दी जाएं लेकिन कोई अंत ही नहीं उसका, डिससेटिस्फेक्शन बना ही रहता है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, महाजी के पास कुछ नहीं था, जिससे मैं उनकी देह की मौत हुई तो केवल दो काली मिर्च के दाने उनके पॉकेट में निकले थे बस, उसके अलावा कुछ नहीं था, ना एक रुपया था ना कुछ नहीं था। और खाने के नाम पर एक वक्त की चाय सुबह को पी ली बस खत्म। किसी ने उनको कभी सोते नहीं देखा। तो भूख प्यास नींद से ऊपर है जो इंसान, देह तो मनुष्य की ही है, लेकिन ये कैपेसिटी कहां से आ गई इसके अंदर? सारी सारी डॉक्टरी तो फेल है उसके आगे, सारी साइंस फेल है उसके आगे। और शांति का सागर है वो। तो इसीलिए सत्पुरुष का जीवन ये सिद्ध करता है इस देह के अंदर शांति है। गुरु जिस चीज का दर्शन कर रहा है, गुरु जिसमें स्थित है, जिसको वो ईश्वर कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, वही वास्तव में पूरे विश्व के एक कण कण को चला रही है जीवित रखे हुए। मुझको भी पता है, डॉक्टर को भी पता है, इस जिस्म के अंदर जब तक जान है ये देह चल रही है, मेडिसिन भी काम कर रही है, और जान इसका संग छोड़ दे कोई काम करेगी? लेकिन गुरु उस जान को जानता है और मैं इस जिस्म को जानता हूं, बस यही भेद है। मैंने इस जिस्म से दोस्ती की है और गुरु ने उस जान से दोस्ती की है, उस जान के साथ वो एक हो गया है। तो इसीलिए सारी दुनिया चाहे भले ही भोगवादी क्यों ना हो, याद सत्पुरुष को ही करती है। पूरा विश्व उठा के देख लिए, कोई ईसा मसीह को याद करता है, कोई मोहम्मद साहब को याद करता है, कोई राम को याद करता है, कोई कृष्ण को याद करता है। पूरी दुनिया में इतना भोगवाद बढ़ने के बाद भी श्रद्धा वहीं बनी हुई है, वहां से बुद्धि नहीं हटती। हटे कैसे? क्योंकि जीवन की रियलिटी है ये। इसलिए सारे हमारे कोशिशें फेल होती हैं तो प्रभु के आगे माथा घिसते हैं, प्रभु कृपा कर बचा ले, फिर कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जीते जी गुरु की बात नहीं सुनते, जीते जी गुरु की बात नहीं सुनते, अहंकार में रहते हैं, विकारों में फंसे रहते हैं। गुरु तो विकारों की कमी करता है तुम्हें, आप विकारों की कमाई करते हो, कोशिश करके कमाई करते हो विकारों की। बुद्धि में अज्ञान है, होश ही नहीं, इस पूरी संपूर्ण प्रकृति के रहस्य को जानते नहीं। तो गुरु लिख कर दे रहा है, प्रेमी ये प्रकृति ईश्वर के अधीन है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं इस संपूर्ण प्रकृति की मालिक तो माँ है, माँ इसको चलाती है, बाकी सब तो कठपुतली की तरह से हैं। जैसे कठपुतली का आपने कभी नाटक देखा हो तो जो कठपुतली का मास्टर होता है उसकी उंगलियों में डोर बंधी होती है और कठपुतली के अंग उससे चलते हैं। तो देखने वाले नाटक क्या कहते हैं, देखो कठपुतलियाँ मार रही हैं, मर रही हैं, डांस कर रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो तो डेड है। जो उनका डायरेक्टर है वो नचा रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे जिस प्रकार कठपुतलियों को उनका डायरेक्टर नचाता है, उस प्रकार सारी सृष्टि को माँ नचा रही है। ये माँ के हाथ में है। उसी को हम ईश्वर कह रहे हैं। तो सत्पुरुषों की निगाह देखो, उनको वो चेतन सत्ता जो इस देह को जिंदा रखे हुए है वो दिखाई पड़ रही है। उनके लिए कर्ता वो है और मेरे लिए कर्ता मैं हूं और तू है। ईश्वर का कोई रोल ही नहीं बीच। इसीलिए जब तक ये बेसिक से नहीं समझोगे और संपूर्ण प्रकृति का स्वरूप बता रहे हैं, इसका एनालिसिस दे रहे हैं वो, इस संपूर्ण प्रकृति तीन गुणों पर बेस है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण उसे कहते हैं जो ईश्वर की तरफ ले जाता है, इसकी बुद्धि में सोच ईश्वर की होती है, पुरुषार्थ ईश्वर प्राप्ति के लिए करता है, इसलिए दुखी जीवों की निष्काम सेवा करता है। निष्काम सेवा, काम न रखकर नहीं, मेरे काम आएगा ये भविष्य में, इसलिए सेवा नहीं करता, निष्काम सेवा करता। वो सेवा कामना खत्म करने के लिए होती है, कामना बढ़ाने के लिए नहीं होती। इसलिए सेवा का फल वो सुखरूप नहीं चाहता, वो ईश्वर चाहता है। तो सतोगुण है, वो ईश्वर की भक्ति करता है, त्याग करता है, निष्काम सेवा करने की कोशिश करता है, और देह की मर्यादा कायम रहे, देह की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए मिनिमम पैसा कमाकर गुजरान वाला प्रोग्राम वो व्यतीत करता है। तभी वक्त बचता है उसका सिमरन के लिए, सेवा के लिए, शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, और मन की चंचलता भी कम होती है, प्रेम से सिमरन करने में सफल हो जाता है। दूसरा प्रकृति का गुण है रजोगुण, जो आम संसारियों में दिखाई पड़ता है, भोगवाद, इंद्रिय सुख के लिए मैक्सिमम पुरुषार्थ करना, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अटेन करना, मैक्सिमम पैसा कमाने की कोशिश करना, और मैक्सिमम साजो सामान इकट्ठे करना और सुख भोगने की कोशिश करना, ये रजोगुण है। और इस रजोगुण का परिणाम गीता कह रही है, रजसाह तू फलम दुखम। इस रजोगुण का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो दुख है, मानसिक क्लेश है। तो इसीलिए संसार में जैसे जैसे ये विकास हो रहा है, पैसे का, प्रोडक्ट्स का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, ये मनुष्य के मन की बेचैनी को बढ़ा रहा है। इसलिए हर वर्ष दुनिया के लोग ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, ज़्यादा बेईमान हो रहे हैं, ज़्यादा पतित हो रहे हैं। ये रजोगुण की देन है। बाहर तो हम कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन सत्पुरुष जानता है ये मनुष्य का पतन हो रहा है, निरंतर पतन हो रहा है। इसलिए महा जी ने फोरकास्ट कर दी, पढ़ने संता विलास वो भी करवा है कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग आपस में ही कट के मरेंगे, क्योंकि रास्ता भी वही अपनाया हुआ है, घोर रजोगुण का रास्ता अपनाया हुआ है। तो तीसरा प्रकृति में गुण है तमोगुण, जो आपके अंदर पाप वृत्ति पैदा करता है, अनधिकार चेष्टा पैदा करता है, बुद्धि आपकी जो है वो डल हो जाती है, सही निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। तो इसीलिए ये तीन जो गुण हैं, ये इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। और जब तीन गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है, सारी प्रकृति में निरंतर परिवर्तन है, जिसका स्वरूप तेरा मन है, जिसका बीज तेरे मन के अंदर है। अब बताइए क्या करोगे संसार में? आप कर लो बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर लो, लेकिन आपका पतन ही होगा। सांसारिक दृष्टि से उत्थान लगेगा आपको, ये तो IAS बन गया, ये तो डॉक्टर बन गया, ये तो इंजीनियर बनेगा, बन गया ये तो, लेकिन देख लो चारित्रिक पतन कहां खड़ा हुआ है। जितनी बड़ी पोस्ट पे उतने ज्यादा पैसे कमाता है वो बेईमानी करके। तो आम जो नतीजा इस विकास का दिख रहा है, वो मनुष्य का पतन ही दिख रहा है। ये नेट रिजल्ट है पूरी दुनिया का। तो ये प्रकृति का विज्ञान है जो सत्पुरुषों ने शास्त्र के रूप में दिया। तो यदि ईश्वर का होश ही नहीं है उस निश्चय को छोड़कर आप विकास कर रहे हो तो ये आप अपने पतन का विकास कर रहे हो। सत्पुरुष ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये आज का सत्पुरुष नहीं, वैदिक काल से लेकर जो कुछ भी लिटरेचर, जो कुछ भी स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, जो कुछ भी शास्त्र मौजूद हैं, सब पढ़कर देख लिए, यही निर्णय है। ये वैदिक काल का निर्णय है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, ये वैदिक काल का निर्णय है। मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है, अर्थात संसारी कोशिश जितनी भी करोगे प्रकृति में, अल्टीमेटली उसका जो परिणाम है वो दुख है, मानसिक क्लेश है। इसलिए जीने का रास्ता क्या है मनुष्य के? काम भोगान निवर्तयेत, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। देखो डायरेक्शन जीने, वैदिक काल से मनुष्य के जीने की डायरेक्शन है ये। जिसकी इच्छा है मैं शांति की कमाई करूं, मेरा चित्त शांत रहे, जब मौत का वक्त आए तो ईश्वर याद आए मुझे, क्योंकि अध्यात्म विद्या ही आपको सिखा रही है मौत है कहां बीच में, देह का परिवर्तन है। गीता कह रही है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार पुरानी देह त्याग कर नई धारण कर लेता है। मैं वही रहता हूं, मन मेरा वही रहता है, मेरे संस्कार भी वही रहते हैं, क्योंकि वो मन के अंदर सुरक्षित है। कर्मफल भी मेरा सुरक्षित है, जो प्रारब्ध के रूप में आपको नई देह में मिलता है भोगने के लिए। तो इसीलिए एक महाराज जी की हुई देह पैदा हुई है, एक हमारी भी देह पैदा हुई। महाराज जी कह रहे हैं प्रेमी, 3 वर्ष की जब इनकी आयु थी तो अंदर पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है। इसलिए 3 वर्ष की आयु में भी माँ जब देखती थी रात को मंगत खाट पर ध्यान में मस्त रहता था। माँ को कह के सुलाना पड़ता था, मगत क्या हो गया, डर गया क्या, कुछ सपना देख लिया क्या? नहीं माँ, सो जाता हूँ, नींद नहीं आई थी, बहाना बनाए थे। कितना बुद्धि में होश था। और 9 वर्ष की आयु में घर छोड़कर पीर ख्वाजा के जंगल में रात बितानी शुरू कर दी ना, 9 वर्ष की आयु का बालक। विचार करके तो देखो, वो भी तो हमारे जैसा इंसान ही है, क्या है उसके अंदर। तो पूर्व जन्म के संस्कार उसको बचपन से मिले या नहीं मिले? तो ये सत्पुरुष की वाणी तो ठीक सिद्ध कर रहे कि जीव की मृत्यु होती नहीं। इसको हम बुद्धि करें, उसकी मृत्यु कहां है? देह की मृत्यु है। तो इसीलिए देह का निर्माण प्रभु खुद ही कर देते हैं इमीडिएटली। महाराज कह रहे प्रेमी, बीच में टाइम गैप है ही नहीं, इधर डेथ उधर जन्म। आप कहोगे गर्भ में 9 महीने रहता है, आप कह लो घर में 9 महीने रहता है, लेकिन 9 महीने तब रहता है ना जब जन्म हो चुका उसका, उसका साइज क्या है वो बात भूल जाओ, लेकिन देह तो बन गई उसकी। यदि विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो देह तो बन गई उसकी, किसकी बनी याद थोड़ा गिनती करोगे, तो ईश्वर मालिक। मेरा जन्म इमीडिएटली हो जाता है, मौत है ही नहीं। इसीलिए ईश्वर को जो जानता है, ईश्वर के लिए जो जीता है, वो इस सारे रहस्य को अपने अंदर ही जानता है। ये जो समता विलास है ये उसके जीवन की कहानी कह रहा है, वो जानता है ये मेरे जीवन की कहानी है, ये केवल ट्रुथ है ये। तो इसीलिए मनुष्य के जीने के लिए ये रास्ता है, इसको ईश्वर का मार्ग बोलते हैं, भक्ति का मार्ग बोलते हैं, शांति का मार्ग बोलते हैं, मोक्ष का मार्ग बोलते हैं। तो मनुष्य ने यदि दुखों से मुक्ति पानी है, मानसिक बेचैनी से मुक्ति पानी है, इस मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है, तो एक ही रास्ता है कि अंतर्यामी ईश्वर की भक्ति करो, उसके लिए जीना सीखो। और उसके जीने के लिए सांसारिक जीवन आपका कैसा होना चाहिए उसके लिए सारा मार्गदर्शन है। हम जो डर डर के जीते हैं, चिंता फिक्र करके जीते हैं, वो कहते हैं कि हर मनुष्य का जो जन्म है, हर मनुष्य का जो शरीर है, वो विशेष प्रारब्ध को लेकर पैदा होता है। जिसको महर्षि रमण कह रहे हैं, जिन कर्मों को करने के लिए देह पैदा हुई है, वो सारे कर्म इस देह के द्वारा होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब बाहर का जीवन तो प्रभु ने पहले ही तेरा फिक्स कर दिया है, बाहर का जीवन तेरा फिक्स कर दिया है, तुझको इस बात का होश ही नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर तू इच्छाओं से मुक्ति पा सकता है। इसीलिए तो डरता रहता है, बच्चा मेरा मरता मर तो नहीं जाएगा, कहीं फेल तो नहीं जाएगा, बड़े भय होते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप पहले ही मर जाते हैं, बच्चे वो जो बनना होता बन जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ के दो लड़के थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, खुद मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे लाहौर यूनिवर्सिटी में वो, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया। वो तो ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। लोग कहेंगे देखो कैसा मूर्ख है, बच्चों की फिक्र नहीं, लेकिन ऋषि जानता है मैं तो ना मालिक हूँ, इनका तो मालिक प्रभु है, इनका प्रारब्ध निश्चित है, इन्होंने जो बनना है बनेंगे वो। और टीवी के महाराजा ने दोनों बच्चों को पाला, वो राजकुमार बन गए। स्वामी रामतीर्थ उनको राजकुमार नहीं बना सकते थे, कुदरत ने बना दिया। तो ये सत्पुरुष वहम में नहीं पड़ते, वो जानते हैं। महाराज ने कह दिया प्रेमी ये जीवन प्रारब्ध के अधीन है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ये युद्ध तो मैं पहले ही कर चुका हूं, ये युद्ध तो हो चुका है, तू तेरा शरीर केवल माध्यम है, तू युद्ध करने वाला कोई नहीं है। अर्जुन की समझ में नहीं आ रही। तो कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से उसको सारा सीन दिखाते हैं, देख कैसे सारे मारे गए। तब वही अर्जुन कृष्ण की आज्ञा पालन करने के रूप में युद्ध कर रहा है और सारे मानसिक क्लेश से बच गया युद्ध करके भी, जिसमें उसका अपना बेटा भी मारा गया, अपने प्रिय लोग भी मारे गए, तब भी सारे मानसिक क्लेश से बच गया वो और पांचों पांडव मोक्ष की गति को प्राप्त हुए। तो ये कृष्ण का योगदान था उनके लिए। यदि संसार देखेंगे संसार तो उजड़ गया, सारे मारे गए, आप कहोगे कैसे कृष्ण थे, सबको मरवा दिया, बचा भी तो सकते थे उनको। प्रारब्ध के अधीन है पूरा का पूरा संसार, ये ईशा आज्ञा में चल रहा है, तो मत समझिए मनुष्य की आज्ञा में चल रहा है संसार। इसलिए निर्भय होकर जब तू गुरु आज्ञा पालन करता है, गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, तो सारे मन का जो जहर है ये भय बेचैनी ये सब गायब हो जाता है। जैसे क्योंकि एकदम से नहीं होता ये, क्योंकि एकदम से बढ़ भी नहीं सकता, तो जैसे ऐसे धीरे धीरे करके तेरी प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, तो खुद देखेगा तेरे मन का चैन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बेचैनी निकलती जा रही है, जिसमें पैसे का कोई रोल नहीं है, जिसमें वस्तुओं का कोई रोल नहीं है, अंदर की बात है। इसलिए जो सत्पुरुष का संग करता है, जो गुरु का संग करता है, उसके मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करता है, उसकी जीवन यात्रा आनंद की ओर जाती है, उसकी जीवन यात्रा शांति की ओर जाती है। वो आनंद रूप, वो शांति रूप, वो ज्ञान रूप ईश्वर अंतर्यामी है, मेरे हृदय के अंदर स्थित है वो। इसलिए अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव करके मैं स्थायी आनंद प्राप्त करता हूँ, स्थायी सफलता प्राप्त करता हूँ, मेरी जीवन यात्रा पूर्ण होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।